समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करूं। आखिर आप एक 5 फुट के मुनहनी वजूद में नस्ब 5,000 TNT के दिल और दिमाग में कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं। इस दुनिया में ज़रूरतमंद शख्सियात की कमी नहीं, मगर सबके नाम लेने में ज़बान और जगह की मजबूरी हायल हो जाती है, लिहाजा ज़रूरत के नुमाइंदा इस्तारों से काम चलाना पड़ता है। जैसे फातिमा जिना, जैसे बेनज़ीर भुट्टो, जैसे मलाला, जैसे आसमा जहांगीर, पर एक फ़र्क है। फातिमा जिना और बेनज़ीर ने आमिरों को ललकारा, मलाला ने बहादुरी के भेस में छुपी बुजदिली की आंखों में आंखें डाली, मगर आसमा ने कौन सा ऐसा इदारा या जिल्ले इलाही या इंसान दुश्मन ज़हनियत है जिसे चैलेंज नहीं किया। वो रातों रात इस तारा थोड़ी बनी थी, उसके कद में उसके बाप का कद भी तो शामिल है, जो 1971 में जेल जाने से पहले तक लाहौर के माल रोड पे प्ले कार्ड लिए तन्हा खड़ा था, मशरकी पाकिस्तान में आर्मी एक्शन नामंजूर। आसमा जीलानी केस याद है? ये केस पाबंद सलासल गुलाम जीलानी की 18 साला गैर वकील ना तजर्बेकार बेटी ने डिक्टेटर याहिया खान के दौर में दायर किया। अदलिया ने याहिया खान को तब गासिब करार दिया जब इत्मीनान हो गया कि वो माजूल हो चुका है और दोबारा नहीं आएगा। अगर आसमा 1983 की एमआरडी तहरीक के दौर में घर पे नज़रबंद ना होती जब उसे वकील बने बस 3 बरस ही हुए थे, अगर वो रिहाई के चंद माह बाद फिर गिरफ्तार होके कोट लखपत जेल में फौजी अदालत के सामने हथियार डाल देती, शरई कवानीन को बतौर ढाल अपनी आमरियत मजबूत करने वाले हुक्मरान के खिलाफ माल रोड पे खवातीन के पहले एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस के डंडे ना खाती, मार्शल लाई मजलिस शूरा आसमा पे तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ाम की करारदाद मंजूर ना करती और आसमा ज़िया के तहकीकाती कमीशन के सामने सुरखरू ना होती, अगर वो पाकिस्तान के पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन की शरीक बानी ना होती, अदलिया बहाली तहरीक में पीछे पीछे चलते हुए अलामती हिस्सा लेती, तो आसमा को कौन जानता। खामखा मुतनाज़ा होना अच्छी बात नहीं, मगर उसूलों की लाज रखते हुए मुतनाज़ा होना फिक्री बोनों के दरमियान कदावरी की निशानी है। इस स्केल पे आसमा का कद आप कहाँ देखते हैं, इसका जवाब ही आपके अपने कद का भी तायुन करेगा। आसमा की एक अजीब आदत थी, सब पे जिस केस ने गरानी की उसको ये नातवां उठा लाया। जिस जंग ग्रुप के अंसार अब्बासी ने आसमा को पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन लिखा, उसी जंग ग्रुप ने अपने खिलाफ इल्जामात के दिफा के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाया। जिस अल्ताफ़ हुसैन की MQM ने उसे एक मुतासिब औरत करार दिया, उसी अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पे पैमरा की पाबंदी को इसी आसमा ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तौहीन मजहब के जिस केस के दिफा से वकीलों के पर जलते थे, आसमा वही केस चिमटी से उठा लेती। जबरी मुशक्क़त के मारे हों के रेप की कयामत से गुजरने वाले गायब अफराद के लावारिस वारिस हों के अदालती निज़ाम के डसे हुए के चौ तरफ से मार खाती मजहबी अकलियतें, गरज जिनको कोई ना पूछता था वो आसमा का पता पूछते थे। जब 2010 में आसमा ने सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत का इलेक्शन लड़ा या 2013 में निगरां वजीर आजम के उम्मीदवारों में खामा खां उनका नाम भी बतौर अफवाह शामिल कर दिया गया, तो जिसको कुछ ना सूझा उसने आसमा को एजाजी कादियानी बना दिया। इमरान खान तक ने यह सवाल उठाया कि इंसानी हकूक़ की तहरीक को आखिर किन किन ममालिक से फंड्स मिलते हैं। आज अगर अक़वामे मुत्तहिदा से लाहौर तक बहुत से लोग अफसरदा हैं, तो बहुत से बिचौलियों, आड़तियों और इदारों ने इत्मीनान का सांस भी लिया होगा। फिर भी क्या ये फ़ख्र काफ़ी नहीं कि मैं उस पाकिस्तान में रहता हूँ जहाँ आसमा अपनी शरायत पे ज़िंदा रही और वो भी डट के।